एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई है, चार्मेन विल्कर्सन का उपन्यास ब्लैक केक।
हाँ, ब्लैक केक। ये कहानी है पहचान की, परिवार के रहस्यों की, और कैसे अतीत मतलब कभी पीछा नहीं छोड़ता।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है कि लेखिका ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है। चार्मेन विल्कर्सन, जिनका खुद का बैकग्राउंड अमेरिकी और कैरेबियन है।
जी, और वो पत्रकार भी रही हैं, कई संस्कृतियों में पली बढ़ी, जमैका, इटली, अमेरिका। इसका असर उनकी लिखाई में साफ दिखता है। वो डायस्पोरा के अनुभव को, पहचान के संघर्ष को बड़ी बारीकी से समझती हैं।
और शायद इसीलिए ये किताब आते इतनी सफल रही। फरवरी 2022 में पब्लिश हुई और तुरंत न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई, रीज़ विदरस्पून के बुक क्लब की पिक।
और ओपरा विन्फ्रे ने हुलू के लिए टीवी सीरीज भी प्रोड्यूस की। जाहिर है कहानी में दम तो है, ये सिर्फ एक पारिवारिक गाथा नहीं है, इसमें रहस्य है, इतिहास है।
हाँ, कई परतें हैं, तो आज हम यही कोशिश करेंगे इन परतों को खोलने की। कहानी की बनावट, किरदारों के उतार चढ़ाव, इसके मुख्य विषय और विल्कर्सन की जो अनोखी शैली है उस पर बात करेंगे।
जरूर, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल शुरू से। जगह है कैलिफोर्निया। एलेनोर बेनेट की मृत्यु हो चुकी है
और उनके दो बेटे बायरन और बिनी, जिन्हें सालों से आपस में बातचीत बंद है, उन्हें बुलाया जाता है वकील के दफ्तर में, चार्ल्स मिच।
हाँ, चार्ल्स मिच। और वहां उन्हें मिलती है उनकी माँ की वसीयत। लेकिन ये कोई आम वसीयत नहीं है, कोई जायदाद या पैसा नहीं।
नहीं, कुछ और ही था, एक लंबी ऑडियो रिकॉर्डिंग।
जी, एक लंबी ऑडियो रिकॉर्डिंग और साथ में एक कैरिबियन ब्लैक केक, वो भी ऐसा जो सालों से फ्रीजर में रखा हुआ था।
अजीब है, और निर्देश क्या था?
निर्देश था कि दोनों भाई बहन को ये केक सही समय आने पर साथ बैठकर खाना है। सोचिए कैसा माहौल होगा, दो बिछड़े हुए भाई बहन, एक रहस्यमयी केक और माँ की आवाज।
ये केक तो जैसे एक प्रतीक बन जाता है ना, विरासत का, अनकही बातों का, लेकिन असली धमाका तो उस रिकॉर्डिंग में था।
बिल्कुल, उस रिकॉर्डिंग में एलेनोर अपनी वो कहानी बताती हैं जिसके बारे में उनके बच्चों को हवा तक नहीं थी। पता चलता है कि उनकी माँ एलेनोर बेनेट असल में कोई और थी, कोवी लिंकॉक नाम की एक लड़की।
कोवी लिंकॉक, जो दशकों पहले किसी कैरेबियन द्वीप से भागी थी।
हाँ, और वो भी बहुत ही खतरनाक हालातों में, एक जबरदस्त शादी, एक संदिग्ध मौत, और फिर पहचान बदलकर भाग निकलना, एक पूरी जिंदगी जो उन्होंने छुपा कर रखी।
बाप रे, ये सुन के तो बच्चों की दुनिया ही पलट गई होगी। ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने सबसे करीबी लोगों को भी पूरी तरह जानते हैं? उनके अंदर कितने राज दफन होते हैं?
और क्या सच जानना हमेशा अच्छा होता है? क्या अतीत के जख्म भर पाते हैं? ये उपन्यास इन्हीं सवालों से जूझता है।
शुरुआत में भाई बहन की स्थिति क्या थी, बायरन और बेनी?
दोनों बिल्कुल अलग। बायरन एक सफल समुद्र विज्ञानी, हमेशा से अच्छा बेटा, थोड़ा सख्त, परफेक्शनिस्ट, अपनी बहन से थोड़ा नाराज भी।
और बेनी?
बेनी यानी बेनेडेटा, वो एक कलाकार है, थोड़ी आजाद ख्याल, परिवार से थोड़ी कटी हुई महसूस करती है, शायद अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी और करियर चॉइस को लेकर हुए मतभेदों के कारण।
तो ये रिकॉर्डिंग उन्हें एक तरह से मजबूर करती है साथ आने के लिए, एक साझा जमीन पर, जहां उन्हें अपनी माँ की कहानी के साथ साथ अपने रिश्ते पर भी सोचना पड़ता है।
हाँ, ये उनके लिए एक शुरुआत है, शायद सुलह की, या कम से कम एक दूसरे को समझने की।
चलिए किरदारों की बात करते हैं, खासकर कोवी लिंकॉक की, जो बाद में एलेनोर बेनेट बनी। उनकी यात्रा कैसी थी?
कोवी की कहानी वो दिल तोड़ने वाली भी है और हिम्मत देने वाली भी। हम उसे एक युवा लड़की के रूप में जानते हैं कैरिबियन द्वीप पर। वो टैलेंटेड तैराक है, आजाद है, सपने देखती है।
लेकिन फिर उसकी जिंदगी में वो मोड़ आता है, उसके पिता लिन उसे एक गैंगस्टर से शादी करने पर मजबूर करते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए।
हाँ, लिटिल मैन स्टर्लिंग।
ये कोवी के लिए एक बुरे सपने जैसा था, उसकी आजादी, उसके सपने सब दांव पर लग गए थे, उसका मकसद बस एक रह गया था, सरवाइव करना।
और फिर शादी के दिन ही उसके पति की मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में।
जी, जहर देने का शक होता है और शक की सुई घूमती है कोवी पर। तब वो करती है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, अपनी मौत का नाटक रचती है और समुद्र में कूदकर भाग जाती है।
अविश्वसनीय, ये उसकी हताशा भी थी और एक तरह की बहादुरी भी।
सही कहा, और उसी रात कोवी लिंकॉक मर जाती है। वो इंग्लैंड पहुंचती है एक नई पहचान के साथ, एलिनॉर बेनेट। लेकिन ये नई जिंदगी डर के साए में जी जाती है। अतीत का डर हमेशा बना रहता है।
तो क्या माँ के रूप में भी वो डर झलकता था अपने बच्चों के साथ उसके रिश्ते में? हाँ, वो प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन बहुत सतर्क, प्रोटेक्टिव। उसने बायरन मोरबेनी में सुरक्षा और सफलता की जरूरत इतनी भर दी कि शायद अनजाने में उन पर एक दबाव सा बना दिया।
और उसकी कहानी का अंत, मतलब उसकी सच्चाई सामने आना, वो उसकी मौत के बाद होता है, रिकॉर्डिंग के जरिए, जैसे वो आखिरकार अपना बोझ उतार रही हो।
जी, वो अपनी कहानी अपने बच्चों को सौंप देती है, पूरी सच्चाई।
अब बायरन की बात करते हैं, उस पर क्या असर हुआ इस सबका? वो जो आदर्श बेटा था,
उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी माँ, उसके पिता, जिनकी छवि उसने मन में बना रखी थी, वो टूट गई। उसे ये समझना पड़ा कि उसका परिवार परफेक्ट नहीं था, बल्कि रहस्यों और बलिदानों पर टिका था।
उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ होगा।
हाँ, धीरे धीरे। गुस्से की जगह समझने ली, कठोरता की जगह सहानुभूति ने। उसने सीखा कि कमजोरियों को मानना भी एक ताकत है। वो ज्यादा मानवीय बना।
और बेनी, उसके लिए कहानी शायद कुछ और मायने रखती होगी, वो जो हमेशा से थोड़ी अलग थलग महसूस करती थी।
बिल्कुल, बेनी को लगा जैसे उसे वैलिडेशन मिल गया हो। उसे अपनी माँ की छिपी हुई जिंदगी और संघर्ष में अपनी भावनाओं की झलक दिखी। उसे समझ आया कि शायद वो क्यों हमेशा बाहरी महसूस करती थी। माँ की कहानी ने उसे एक संदर्भ दिया।
तो उसका सफर सुलह का था, अपने भाई के साथ, अपने अतीत के साथ।
हाँ, भाई के साथ उसका रिश्ता सुधरने लगता है। वो अपने माता पिता को भी एक नई नज़र से देख पाती है। वो समझती है कि माँ की सख्ति शायद डर की वजह से थी, प्यार की कमी की वजह से नहीं। वो अपनी जगह ढूंढ लेती है इस जटिल इतिहास में।
कुछ और किरदार भी हैं जो अहम हैं। एलिनॉर के पति बर्ट,
बर्ट बेनेट। शुरू में वो शांत और स्थिर लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एलिनॉर का पूरा सच जानते थे और उन्होंने उसे बचाने में, एक नई जिंदगी देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका प्यार गहरा और खामोश था।
और गिब्स, कोवी का पहला प्यार,
देना पड़ता है सुरक्षा के लिए। ये उनके रिश्ते पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है।
वकील चार्ल्स मिच भी थे।
जी, चार्ल्स मिच, वो परिवार के पुराने दोस्त हैं, एलिनॉर के राजदार। अब वो बायरन और बेनी के लिए गाइड की तरह हैं।
और एक और किरदार है, मार्बल।
हाँ, मार्बल, एक मशहूर फूड एक्सपर्ट। उसका परिवार की परंपराओं से, खासकर उस ब्लैक केक से, एक अनजाना सा कनेक्शन निकलता है। और उसकी असली पहचान, वो कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज है।
तो इन सब किरदारों और कहानियों को लेखिका ने कैसे जोड़ा है? नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है?
विल्कर्सन ने दोहरी समय रेखा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कहानी प्रेजेंट और पास्ट के बीच झूलती रहती है। हम बायरन और बेनी को प्रेजेंट में रिकॉर्डिंग सुनते हुए देखते हैं और साथ ही एलिनॉर की आवाज में उसकी अतीत की कहानी सुनते हैं।
इससे रहस्य बना रहता है ना? पाठक भी भाई बहन के साथ ही सच जान पाते हैं और ये भी देखता है कि अतीत कैसे वर्तमान को आकार देता है।
बिल्कुल, कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, फिर हम 1960 के दशक के कैरेबियन द्वीप पर जाते हैं, कोवी की जिंदगी देखते हैं,
फिर वो शादी, पति की मौत और कोवी का भाग निकलना। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
हाँ, यहीं कोवी खत्म होती है। प्रेजेंट में भाई बहन शॉक में हैं, लेकिन शायद पहली बार ठीक से बात कर रहे हैं।
फिर कहानी लंदन जाती है, कोवी अब एलिनॉर है।
लंदन में गिब्स से मिलना, प्रेगनेंसी, और फिर वो मुश्किल फैसला बेटी को गोद देना, फिर गिब्स से अलग होना और स्कॉटलैंड भाग जाना। ये सब बहुत उथल पुथल वाला दौड़ था।
स्कॉटलैंड में बर्ट से मुलाकात होती है, ये शायद उसकी जिंदगी में स्थिरता लाने वाला मोड़ था।
जी, वो बर्ट को सब सच बताती है और बर्ट उसे स्वीकार करता है, उसे बचाने का वादा करता है। वे शादी करते हैं, अमेरिका आते हैं, बायरन और बेनी पैदा होते हैं। वो अतीत को पीछे छोड़कर एक परिवार बनाते हैं, या कम से कम कोशिश करते हैं।
लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता, कहानी का आखिरी हिस्सा इसी पर फोकस करता है।
हाँ, प्रेजेंट में बच्चे रिकॉर्डिंग सुनकर माँ के व्यवहार को समझने लगते हैं, बायरन पर दबाव, बेनी से दूरी क्यों थी,
और रिकॉर्डिंग में मार्बल को ढूंढने का जिक्र होता है।
जी, और जब बायरन मार्बल से मिलता है, जो वही फूड एक्सपर्ट है, तो राज खुलता है। मार्बल उनकी सौतेली बहन है, वही बेटी जिसे गोद दिया गया था।
कहानी का अंत कैसे होता है? वो केक,
अंत में तीनों भाई बहन मिलते हैं और वो ब्लैक केक शेयर करते हैं। वो केक अब सिर्फ एक मिठाई नहीं, वो मेल मिलाप का, परिवार के जुड़ने का और एक नई, ज्यादा सच्ची शुरुआत का प्रतीक है।
वाह, ये तो बहुत ही भावनात्मक सफर है। अब अगर हम इसके मुख्य विषयों पर बात करें, पहचान का मुद्दा तो बहुत बड़ा है।
हाँ, पहचान जो हम बनाते हैं, जो हमसे छीन ली जाती है, जिसे हम छिपाते हैं, कोवी का एलेनोर बनना दिखाता है कि पहचान कितनी बदल सकती है, पर शायद अंदर का कोर वही रहता है। बायरन और बेनी भी अपनी मिक्स पहचान से जूझते हैं।
और ये सवाल कि क्या पहचान जन्म से मिलती है या हालात बनाते हैं या हम खुद चुनते हैं।
सही। और पहचान छिपाने की कीमत क्या है? एलेनोर ने जान तो बचाई पर अपनी जड़ों से कट गई।
दूसरा बड़ा थीम है पारिवारिक रहस्य और सच का वजन।
हाँ, कैसे राज बचाते भी हैं और नुकसान भी करते हैं। एलेनोर का सच छिपाना सुरक्षा के लिए था, पर उसने अनजाने में दूरियां भी पैदा की।
और वो बात कि कुछ सच शायद सही वक्त आने पर ही बताए जा सकते हैं। जैसा उपन्यास में कहा गया है, भावार्थ है कि कुछ कहानियां जीते जी बताने के लिए खतरनाक होती हैं, पर इतनी जरूरी कि कब्र में नहीं ले जाई जा सकती।
बिल्कुल। और फिर है सांस्कृतिक विरासत और विस्थापन। इसमें ब्लैक केक का प्रतीक बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, वो केक सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, वो यादें हैं, परंपरा है, जड़ों से जुड़ाव है, खासकर जब आप अपनी जमीन से दूर हों।
भोजन कैसे संस्कृति को जिंदा रखता है, ये उपन्यास खूबसूरती से दिखाता है।
प्यार और बलिदान के भी कई रूप हैं इसमें।
हाँ, कोवी और गिब्स का युवा प्यार जो अधूरा रह गया, फिर एलेनोर और बर्ड का मैच्योर प्यार जो समझ और सुरक्षा पर टिका था, और एलेनोर के बलिदान, अपनी पहचान, अपना अतीत, सब प्यार और सुरक्षा के लिए।
और इन सब के पीछे इतिहास का प्रभाव भी है, कैरेबियन इतिहास, नस्ल, वर्ग।
जी, उपन्यास दिखाता है कि कैसे बड़े सामाजिक मुद्दे व्यक्तिगत जीवन को आकार देते हैं, लेकिन साथ ही ये इंसानी हिम्मत और मुश्किलों से उभरने की क्षमता का भी जश्न मनाता है।
लेखन शैली की बात करें तो दोहरी समय रेखा के अलावा और क्या खास है?
बदलते नैरेटिव पर्सपेक्टिव। कभी हम तीसरे पुरुष में किरदारों के साथ होते हैं, कभी एलेनोर की आवाज सीधे रिकॉर्डिंग से सुनते हैं। इससे गहराई आती है।
प्रतीकात्मकता भी बहुत है। केक तो है ही, समुद्र और तैराकी भी बार बार आते हैं।
हाँ, समुद्र, वो आजादी भी है, खतरा भी, पलायन का रास्ता भी, और अनजानी गहराइयों का प्रतीक भी, इतिहास की, भावनाओं की।
रहस्य खुलने का तरीका भी काफी अच्छा है, धीरे धीरे, परत दर परत।
जी, और भाषा में भी वो कैरेबियन टच है जो कहानी को ऑथेंटिक बनाता है।
कुछ पंक्तियां याद रह जाती हैं, जैसे वो विचार कि हम सब अपने अंदर कई इंसान लेकर चलते हैं, दुनिया को कौन सा दिखाते हैं, ये सवाल है।
हाँ, और भोजन और स्मृति का कनेक्शन, कि भोजन यादें हैं और यादें ही हमारे अपनों को हमारे पास रखती हैं।
विरासत वाली बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि विरासत सिर्फ वो नहीं जो मिलती है, बल्कि वो भी है जिसे हम आगे बढ़ाना चुनते हैं।
सही कहा। इस उपन्यास का असर बहुत गहरा होता है। आप किरदारों के दर्द, उनकी खुशी, उनकी दुविधाओं को महसूस करते हैं।
हाँ, और पहचान का मुद्दा, ये बहुत लोगों से जुड़ता है, खासकर अप्रवासी या मिश्रित पृष्ठभूमि वालों से।
और अंत में ये उम्मीद की कहानी भी है, लचीलेपन की, रेजिलियंस की, कि जख्मों के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती है, नए रिश्ते बनते हैं।
ये हमें अपने परिवार के इतिहास, उनके अनकहे सच के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
संक्षेप में कहें तो ये कहानी सिखाती है कि परिवार जटिल होते हैं, उनमें राज होते हैं, बलिदान होते हैं, लेकिन ईमानदारी और समझ से जुड़ाव मुमकिन है।
और ये कि हमारी जड़ें चाहे कितनी भी उलझी हों, हमारी पहचान का हिस्सा हैं, उन्हें जानना हमें पूरा करता है।
और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे अपने परिवारों में कितनी ऐसी कहानियां होंगी जो कभी कही नहीं गई।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।